مشات. باپ دادا نے دادی تتھا دادی جانکی کو گلے لگایا اور بولے، دیکھنے والوں کو بھی خوشی ہے، سبھی صدا برہما باپ کی بجاؤں میں سمائے ہوئے ہو، صدا برہما باپ کی بجائے، یہ سبھی بچوں کی سیفٹی کا سادھن ہے، تو کہاں رہتے ہو، بجاؤں میں رہتے ہو نا، جو پیارے ہوتے ہیں وہ سب بجاؤں میں ہوتے ہیں، سیوا میں باپ دادا کی بجائے ہو اور رہنے میں باپ کی بجاؤں میں رہتے ہو، دونوں ہی درش انبھو ہوتا ہے نا، کبھی بجاؤں میں سما جاؤ اور کبھی بجائے بن کر سیوا کرو، کون سی بجاؤ، رائٹ ہینڈ، رائٹ ہینڈ سونا، لیفٹ تو نہیں ہونا، رائٹ ہینڈ کا ارتھ ہی ہے شریشٹھ کاریہ کرنے والے، رائٹ ہینڈ تو لیفٹ ہینڈ تو آپ کی پرجا کی بھی پرجا ہوگی، لیکن آپ سبھی براہمن رائٹ ہینڈ ہو، یہ نشہ ہے کہ ہم بھگوان کے رائٹ ہینڈ ہیں، کوئی رواجی مہاتما دھرماتما کے نہیں، پرماتما کے رائٹ ہینڈ، دونوں کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہو، نمت آتماؤں کو تھکاتے تو نہیں ہونا، اچھی اچھی کہانیاں سناتے ہیں، اچھا ہے، آپ لوگوں کو سرو انبھو کی خان آپ لوگوں کو سرو انبھو کی خان بھرنے کے نمت ہے یہ، اچھا تو کیا سنا، بابا دادیوں سے بات کر رہے ہیں، دیکھنے والوں کو بھی خوشی ہے، سبھی سدا برہما باپ کی بھجاؤں میں سمائے ہوئے ہو، سدا برہما باپ کی بھجائے سبھی بچوں کی سیفٹی کا سادھن ہے، برہما باپ کی بھجائے بچوں کی سیفٹی کا سادھن ہے، سرکشا کوچ، براہمن جیون میں سیفٹی کا سادھن کیا ہے، برہما کی بھجائے، اور سیفٹی کا سادھن کیا ہے براہمن جیون میں،
پرماتما چھتر چھایا،
پرماتما کی یاد، پرماتما کی چھتر چھایا، کل بابا نے کہا نا بابا سیوا دھاری بن کر آیا ہے، نیارے اور پیارے رہتے ہو تم، چاہے دیش کی پرستھتی کتنی ہی نازک ہو، چاہے وہاں کچھ بھی ہو رہا ہے سوستھتی سے، پرماتما چھتر چھائے میں تم نیارے پیارے رہتے ہو کمل پشپ کے سمان، تو پرماتما کی یاد، پرماتما کی چھتر چھایا ہی سیفٹی کا سادھن ہے، ایک دوسرا
دل تک،
پرماتما دل تک، اچھا وہ جو یاد میں ہے وہی دل تک تمہیں ہے، جو پیور آتما ہے وہی پیور دل تک تمہیں رہ سکتی، وہ ایک ہی ہو گیا یاد یا چھتر چھایا یا دل تک، اور مرلی جان، مرلی ہی چھتر ہی سیفٹی کا سادھن ہے، یا تو کہو گیان، گیان کا منن چنتن، منن شکتی ہی چھتر چھایا یا سیفٹی کا سادھن ہے، اور
یاد،
یوگ، یوگ یاد میں آ گیا، یوگ کا کوچ، شریشٹھ سنگ سیفٹی کا سادھن ہے، شریشٹھ سنگ کہنے سے زیادہ اس سے بھی اچھا سنگٹھن کی شکتی، یگیہ کا قلعہ،
مریادا کی لکیر
وہ آئیں گے، تو یگیہ کا قلعہ، اس قلعے کے اندر جو رہتے ہیں ان سے اتنے وکرم نہیں ہوتے، جو اس قلعے کے باہر رہنے والے ہیں ان سے کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے وکرم ہوتے رہتے، اس کے لیے یہاں رہنا یا مدھوبن بھی ایک سیفٹی کا سادھن ہے، یہاں رہنے والے جو ہے ان کے وکرم اتنے نہیں ہو پاتے، جس کو کرنے ہو تو کہیں پر بھی کرے گا، پرنتو یہ مدھوبن ہی سیفٹی کا سادھن ہے، یہ یگیہ کا قلعہ ہی سیفٹی کا سادھن ہے، شریشٹھ سنگ ہی سیفٹی کا سادھن ہے، تو یہ ایک سیفٹی کا سادھن ہے، اور سیفٹی کا سادھن کون سا ہے، ارے کتنی اچھی اچھی پوائنٹ رہ گئی ہے، دھارنا ہے ساری، جو بھی ہماری دھارنا ہے، مریادا، دھارنا سے زیادہ اچھا مریادا ہے، کل کہا نا بابا نے دل تخت نشین جو ہے وہ دل تخت اتنا پیور ہے، اس میں کیول پیور آتما ہی رہ سکتی ہے، پیور آتما ارتھات سنکلپ میں بھی امریادا اور اپوترتا نہیں، تو دھارنا ہے یا پھر مریادا ہے، اس سے بھی اور ایک جڑا ہوا شبد ہے شریمت ہی سیفٹی کا سادھن ہے، जो श्रीमत पर चल रहे हैं वो सेफ है, जो श्रीमत पर श्रीमत को छोड़कर अपनी मनमत या परमत पर चल रहे हैं वहां असुरक्षा की बहुत ज्यादा संभावना है। और क्या है सेफ्टी का साधन, सबसे पावरफुल सेफ्टी का साधन नहीं बताया अभी तक, प्रतिज्ञा,
मैं आत्मा हूँ,
देही अभिमानी स्थिति सेफ्टी का
साधन, शरीर,
परमात्मा संग, एक परमात्मा याद, एक परमात्मा का साथ, साथ का अनुभव। कल बाबा ने कहा ना, कोई कोई बच्चे जो है वो सदा साथ रहते हैं, उनको देखकर बाबा खुश होते हैं, कोई कोई है वो साथ ही बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनको देखकर तरस पड़ता है, कोई जो है वो महावीर है उनको देखकर खुश होते, कोई जो है वो मेहनत कर रहे हैं, कोई जो है जिन्होंने दिल से आवाज निकलती है पाना था सो पा लिया, पर किसी के दिल से आवाज निकलती है कि अभी पा रहे हैं, कोई प्राप्ति स्वरूप है, कोई प्राप्त कर रहे हैं, कोई सहज योगी है, कोई पुरुषार्थी योगी है। जो पुरुषार्थ योगी है उसको देखकर तरस पड़ता है, जो सहज योगी है उसको देखकर बाबा को खुश होते हैं, इच्छित होते हैं उसको देखकर।
अनुभव की टॉपिक
जो
अनुभव की टॉपिक इतना भर लो ताकि बाप का रेस्पेक्ट मिलेगा,
बाप का रेस्पेक्ट मिले। अनुभव भी सेफ्टी का साधन है, अच्छा बताया, अनुभव जो है दिव्य बुद्धि भी सेफ्टी का साधन है। सेवा में बिजी रहना, सेवा में जो लगे हुए है उनके पास माया जरा कम आती है, माया देखती है कि ये बिजी है, पर जो चाय पानी देते हैं माया को, माया वहां रह जाती है, रुक जाती है, जो खात्री करते हैं साक्षी ऊंची अवस्था है, चलो वो भी सेफ्टी का एक साधन है। साक्षी इज अ रिजल्ट ऑफ एवरीथिंग, जो कुछ अध्यात्म का पुरुषार्थ है उसका एक जैसे परिणाम है वो, तो साक्षी स्थिति भी सेफ्टी का साधन है। और
मंथन में बिजी
हो गया वो मनन चिंतन मंथन,
ड्रामा,
ड्रामा का ज्ञान, ज्ञान में ही अंतर्गत ही आ जाएगा, ज्ञान में एक तो चिंतन भी आ जाएगा, ज्ञान में ड्रामा का ज्ञान, जैसे बाबा ने कल दो पॉइंट्स बताए ना, एक तो रचता बाप का परिचय इसके ऊपर मनन करो, और दूसरा रचना का विस्तार, ये दो पॉइंट है उस पर मनन करो, तो ये ज्ञान के संबंधित है सारा। परमात्मा का परिचय कैसा दे, अगर इस चिंतन में हम लगे रहे या सेवा में लगे रहे या किसी को ज्ञान सुनाने में लगे रहे, सेवा, स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा, हर तरह की सेवा, स्व सेवा, विश्व सेवा, यज्ञ सेवा, कभी बाबा ने तीन सेवाएं गिनाई है, स्व सेवा, विश्व की सेवा और यज्ञ की सेवा, मनसा वाचा कर्मना, ये तीन सेवा है, तन मन धन, ये तीन सेवा है, तीनों रीति से तीनों रूपों से सेवा करो, कभी बाबा ने इस पर भी मुरली चलाई है। तो किसी भी तरह की सेवा, तन मन धन, मनसा वाचा कर्मना, स्व सेवा, यज्ञ सेवा, विश्व सेवा, ये किसी भी तरह की सेवा में जो बिजी रहते हैं उनके पास माया कम आती है, वो सुरक्षित है। और सबसे बड़ा साधन कौन सा है,
लगन, मगन,
याद हो गया, वो याद में आ गया, याद में मगन रहो या फिर ज्ञान में मगन रहो, दोनों याद और ज्ञान आ गया,
आत्मिक दृष्टि,
आत्मिक दृष्टि, हाँ उसमें देहभान नहीं आएगा, जब आत्मिक दृष्टि का साधना करेंगे, आत्मिक दृष्टि की अभ्यास करेंगे तो फिर माया का वार नहीं हो सकता।
जैसे संसार क्या होता है कि हमारे कोई व्यर्थ आ रहा है, हमें ये भी पता है कि वो व्यर्थ है, और हम मतलब वो इतना पावरफुल होता है कि हम ज्ञान भी यूज करते हैं,
कोई भी संस्कार जो है जो लंबे समय से चल रहा है वो अपनी जड़ें जमाए हुए हैं अवचेतन मन में, इतना शक्तिशाली हो गया है तो उसको अगर आपको मिटाना है वो तुरंत नहीं होगा, उसके लिए लंबे समय की साधना की आवश्यकता है। कल बाबा ने वही तो कहा ना कि माया जो है वो वार करती है, उसके पास बाण है व्यर्थ संकल्पों के, और किसके ऊपर वार करती है, जो बुद्धि कमजोर है उसको वार करके बुद्धि को कमजोर बना देती है, दिव्य बुद्धि पर वार होता है उसका, और दिव्य बुद्धि कमजोर होती है फिर परवश हो जाती है, इसके लिए बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि की खुराक क्या है,
मनन
शक्ति। इसके लिए अभी तक जो संस्कार बने हुए हैं, कुछ कुछ संस्कार बहुत शक्तिशाली है, और वो इतने शक्तिशाली है कि वो अगर बाहर निकल गए तो ज्ञान और योग और तपस्या सब एक तरफ रह जाता है, इतना शक्ति है उन संस्कारों में। अभी वो संस्कार बने कैसे, रिपीटेशन से, क्योंकि बार 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 किया और उसकी वजह से वो इतना शक्तिशाली बन गया है। अभी हमको रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा माइंड की। द वर्ड इज रीप्रोग्रामिंग, रीकंडीशनिंग। जैसे एक बच्चा है जिसको बचपन से कहा गया ये नहीं करो तो भूत आ जाएगा, वो नहीं करो तो ऐसा हो जाएगा, तो भय का संस्कार वो बचपन से ही है उसके अंदर। वो अभी 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, हर चीज से भय लगता है, हर चीज से भय है, छोटी मोटी बातों से भी उसको भय लगता है। अभी ये संस्कार को मिटाने के लिए उतना वहीं जाना पड़ेगा जहां से उसका उद्गम है, जो सोर्स है उसका, उतना उसके अपने अंदर गहराई में जाने पड़ेगा। और उसका साधन ही है मनन, चिंतन या फिर योग। योग में जो अशरीरी अवस्था है वो क्या है, हम अपने चेतन मन को निष्क्रिय कर रहे हैं। वहां पर परम धाम की जो स्थिति है, चेतन मन निष्क्रिय हो रहा है और हमारा जो अंतर मन है वो एक्टिवेट हो रहा है, और उस अंतर मन में फिर हम संकल्प दे रहे हैं कि परमात्मा की शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही है, पवित्रता की किरणें मुझ में समा रही है। अभी यही योग अगर जितना गहरा होगा और शक्तिशाली होगा तो वो जो पुराने संस्कार है वो खत्म होंगे, जो पुरानी स्मृतियां है, पुरानी बातें हैं, आदतें हैं, वो नष्ट होगी। एक तरफ तो पुराना नष्ट करना है और दूसरी तरफ नया भरना है, स्थापना और विनाश, ये कार्य साथ साथ चले हमारे। विनाश पुराने का और स्थापना नए की। और कौन सा साधन है सुरक्षा का सबसे शक्तिशाली?
साफ रखता है स्वच्छता,
उससे रिलेटेड संपूर्ण पवित्रता, प्यूरिटी ही सिक्योरिटी है। ये सबसे फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट तो ये है, प्यूरिटी ही सिक्योरिटी है, प्यूरिटी ही सुरक्षा है। तो सुरक्षा के साधन क्या क्या है हमारे पास? बाबा ने कभी कहा है ना, सहयोग का किला, सहयोग की शक्ति से किला मजबूत होगा, यही सेफ्टी का साधन है। एक दूसरों को सहयोग देना ये भी सेफ्टी का साधन है। सहन करना सारी शक्तियां सेफ्टी का साधन है। तो सेफ्टी के साधन क्या क्या हुए? एक तो बाबा की छत्र छाया, श्रीमत, मर्यादाएं, पवित्रता, दिल तक पे रहना, याद में रहना, साथ में रहना, संग रहना, संगठन सेफ्टी का किला है। आत्माभिमानी स्थिति, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, रूहानी ड्रिल, वो आत्मिक स्थिति में आ जाएगा जिसमें रूहानी ड्रिल है, आत्मा को शक्तिशाली बनाना, मनन कर आत्मा को शक्तिशाली बनाना, स्वयं स्वयं को शक्तिशाली बनाना। कल कहा ना, कोई भी एक सामान ले लो, एक टाइटल ले लो, उसकी गहराई में चले जाओ तो बुद्धि इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि माया फिर वार नहीं कर सकेगी। तुम्हारे पास है स्मृति की शक्ति, भक्तों के पास है स्मरण की शक्ति, वो अपने अल्पकाल की विधि से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हो, और तुम अपने, वो अपनी शक्तियों को नहीं भूलते, तुम अपनी स्मृति की शक्ति को क्यों भूलते हो? तो तुम्हारे पास है स्मृति की शक्ति, तो बाबा कह रहे हैं सब सदा ब्रह्मा बाप की भुजा है, सभी बच्चों की सेफ्टी का साधन है। तो हमारे सेफ्टी के साधन हमको पता रहना चाहिए, कवच, योग का कवच, ढाल, तीर, सब होना चाहिए हमारे पास, अस्त्र शस्त्र। तो कहाँ रहते हो? भुजाओं में रहते हो ना, जो प्यारे होते हैं वो सदा भुजाओं में होते हैं। सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो, तुम भुजाएं हो और तुम भुजाओं में रहते हो। भुजाएं हो अर्थात राइट हैंड, सहयोगी, और बाबा की भुजाओं में रहते, दोनों ही दृश्य अनुभव होते हो ना, सभी भुजाओं में समा जाओ, कभी भुजाओं में समा जाओ, कभी भुजाएं बनकर सेवा करो राइट हैंड पर। कौन सी भुजाओ? राइट हैंड, राइट हैंड होना, लेफ्ट तो नहीं होना, लेफ्ट हैंड, लेफ्टिस्ट वो नहीं हो। राइट हैंड का अर्थ है श्रेष्ठ कार्य करने वाले। राइट हैंड तो, ये लेफ्ट हैंड तो आपकी प्रजा की भी प्रजा बनेगी, लेफ्ट हैंड जो है वो तुम्हारी प्रजा की भी प्रजा है। सबसे पहला भक्त कौन सा है तुम्हारा संगम पर? सुमन भाई, सबसे पहला भक्त कौन है संगम पर हमारा? कल कहा ना बाबा ने,
भगवान के भक्त
माया, माया तुम्हारे वश हो जाएगी, तुम्हारे अधीन हो जाएगी, माया तुमको नमस्कार करेगी, परवश हो जाएगी। तो संगम पर हमारा समान है, मैं मास्टर
भगवान
भगवान हूँ, अगर अभी भगवान नहीं बने तो जो भक्त ही रह गए उनके भक्त कौन बनेगा? हमें भगवान बनना पड़ेगा, मास्टर भगवान। तो संगम पर माया हमारा पहला भक्त है। तो हमारा समझ गया, मैं मास्टर भगवान हूँ। लेकिन आप सभी ब्राह्मण राइट हैंड हो, यह नशा है, भगवान के राइट हैंड है, ये नशा है, हम भगवान के राइट हैंड है। कल बाबा ने और दो बातें कही ना, रूहानी नशा और खुशी की पॉइंट्स, रूहानी नशा और खुशी की पॉइंट्स का को बुद्धि में लाना, अर्थात मनन शक्ति, मनन शक्ति अर्थात टाइटल्स को बुद्धि में लाना, स्मृति में लाना, मनन शक्ति अर्थात गुणों के श्रृंगार को स्मृति में लाना, मनन शक्ति अर्थात रूहानी नशे को स्मृति में लाना, मनन शक्ति अर्थात खुशी की पॉइंट्स को स्मृति में लाना, मनन शक्ति अर्थात परमात्मा रचता बाप के परिचय को स्मृति में लाना, मनन शक्ति अर्थात रचना के विस्तार को स्मृति में लाना, मनन शक्ति अर्थात याद के द्वारा अनुभव और प्राप्तियों के जो पॉइंट्स है उसको स्मृति में लाना, ये सातों चीजों को स्मृति में लाना अर्थात मनन शक्ति। जो चाहे उस पर मनन कर सकते हो, मनन करते करते सहज ही मगन हो जाओ, जो तुम्हारी पसंदी है उस पर मनन करो। मनन शक्ति ही बाबा ने कहा विशेष, बाबा ने तुम्हारे पास निवारण का साधन है, विशेष शक्ति दिया है, वशीकरण मंत्र दिया है, ये बड़ा साधन दिया है बाबा ने कल कहा। तो तुम्हारे पास इतना बड़ा साधन है, उसको यूज करो। ये कोई रिवाजी महात्मा धर्मात्मा के नहीं, परमात्मा के राइट हैंड है। कल कहा ना, सोचो, क्या सोचो,
हम परमात्मा के राइट हैंड।
कल क्या बोला, बहुत पावरफुल पॉइंट है कल की मुरली में, एक किस भगवान के बगीचे के फूल हो, कौन है वो खिवैया जिसकी नाव में हम बैठे हैं, कौन सा ये तारामंडल है जिसका ज्ञान सूर्य वो है, कौन सा ये यज्ञ है जिसकी स्थापना उसने की है, कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ कौन पढ़ाने आता है, कुलपति कौन है इस विश्वविद्यालय का, कौन है यहाँ का चांसलर। तो ये सब नशे की पॉइंट्स है, रूहानी नशे की पॉइंट्स स्मृति में लाओ, खुशी की पॉइंट्स स्मृति में लाओ, तुम रूहानी गुलाब हो। ये बाहरी मौसम जो है उसमें जितने फूल खिले, हम फूल खिले हुए फूल है, सदा खिले हुए फूल, खुशबूदार फूल, सुंदर फूल, रंगत वाले फूल, अपनी रूहानियत से सबको आकर्षित करने वाले फूल। तो कोई रिवाजी महात्मा धर्मात्मा के नहीं, परमात्मा के राइट हैंड हो। दोनों को देख करके सब खुश होते, निमित्त आत्माओं को थकाते तो नहीं हो, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, अच्छा है। आप लोगों को सर्व अनुभव की खान भरने के निमित्त है यह, अच्छा। कॉन्फ्रेंस या रिट्रीट दोनों की रिजल्ट अच्छी रही, अच्छा। विदेश के निमित्त बने हुए आदि रतन भी अच्छी अंदाज में आए हैं, कोई कोई दूर होते भी समीप है फिर भी अच्छे पहुंच गए। 17 तारीख को 10 वर्ष से ज्ञान में चलने वाले डबल विदेशी भाई बहनों का विशेष समारोह मनाया गया। बाबा कह रहे अच्छा है, हिम्मत की मुबारक, 10 वर्ष निश्चित बुद्धि बन पार किया, तो अचल अड़ल रहने की मुबारक हो, अचल अड़ल रहने की मुबारक। लंबी इनिंग की है इन्होंने यज्ञ में, जीवन भाई कितनी इनिंग हो गई, लंबी चल रही है लंबी इनिंग वाले इधर खिलाड़ी है, चल रहे अभी भी उनको बाबा मुबारक दे रहे हैं।
रिटायर नहीं होता भाई,
रिटायर नहीं होता है अभी, फिर क्रिकेट मैच चल रही है अभी, फिर 10 वर्ष वालों को क्या करना है, जैसे 10 वर्ष समस्याओं को पार करते हिम्मत उमंग से चलते उड़ते रहे, ऐसे ही फिर अभी जल्दी स्थापना की डायमंड जुबली होनी है, उसमें फिर पार्ट लेना। डायमंड जुबली की भी एडवांस, इन एडवांस पक्का है ना, ज्यादा दिन तो नहीं है। अच्छा दृश्य था, बाप को अच्छा लगा, रिवाणियत का दृश्य अच्छा था। अभी अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, ग्रुप नंबर 1। सभी पॉइंट्स का सार क्या है, पॉइंट बनना, सब पॉइंट्स का इसेंस हुआ पॉइंट बनना। तो पॉइंट बनना सहज है या मुश्किल है, जो सहज बात होती है वो सदा होती है, और मुश्किल होती है तो समटाइम होती है। सबसे इजी क्या है? पॉइंट। सबसे इजी क्या है? पॉइंट, बिंदु। बाबा ने कहा है जो अंधे व्यक्ति है उनको भी पॉइंट लगाना आता है, जिनको आंख से दिखाई नहीं देता है वो भी पॉइंट लगाते हैं, और तुम हो त्रिनेत्री तो तुमको क्या मुश्किल है पॉइंट लगाने में?
उनको पता नहीं ना, क्वेश्चन मार्क कैसे लगता है, बिंदु लगाते हैं।
पॉइंट को लिखना सहज है ना। जब भी पॉइंट रूप में स्थित नहीं होते हैं तो क्वेश्चन मार्क की क्यू होती है ना। क्वेश्चन मार्क बाबा को पसंद नहीं, पॉइंट पूर्ण विराम। क्वेश्चन मार्क मुश्किल होता है, तो जब भी क्वेश्चन मार्क आए तो उसके बदले इजी पॉइंट लगा दो। किसी भी बात को समाप्त करना होता है तो कहते हैं इसको बिंदी लगा दो। फुल स्टॉप लगाना आता है ना, फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन याद है ना, कौन सा है? फुल स्टॉप लगाना, बीती सो बीती, और
फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप।
फुल स्टॉक होगा तो फुल स्टॉप लगेगा, सारे खजाने भरपूर होंगे, शक्तियां भरपूर होगी, प्राप्तियां भरपूर होगी, तो फुल स्टॉप लगेगा। और ड्रामा कल्याणकारी है, जो हो रहा है कल्याणकारी। ड्रामा में अकल्याण है ही नहीं, नुंदा ही नहीं है अकल्याण ड्रामा में, नथिंग न्यू। ड्रामा की सारी पॉइंट स्मृति में, अगर दिन में 24 घंटे में एक बार ड्रामा की पॉइंट सारी स्मृति में लाना है, चाहे योग में बैठे हुए, चाहे चलते फिरते, चाहे कर्म करते हुए, पर ड्रामा की जितनी पॉइंट है 24 घंटे में एक बार सारी पॉइंट हमारी स्मृति में आए, चाहे रात को सोते समय। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में हो रहा है अच्छा हो रहा है, ड्रामा सत्य है, ड्रामा में अकल्याण है ही नहीं। ड्रामा में जो हो रहा है हर एक का पार्ट अपना 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 है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में नथिंग न्यू, ड्रामा में जो हो रहा है सब कुछ रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। और
न्यायकारी,
ड्रामा न्यायकारी है, कल्याणकारी है, ड्रामा विविधता पूर्ण है। इस ड्रामा में अकल किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो रहा है। ड्रामा में क्या
अनेक बार हुबहू
रिपीट होता है ये ड्रामा, इसके लिए इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है, और जो हो रहा है वही सत्य है। इस ड्रामा में सभी एक्टर्स एक्यूरेट है, इस ड्रामा के सभी एक्टर्स निर्दोष है, केवल निर्दोष नहीं संपूर्ण निर्दोष, सारे झगड़े खत्म। इस ड्रामा का हर एक्टर संपूर्ण निर्दोष है,
भगवान का
ये ड्रामा भगवान को प्रिय है, तो भगवान को जो पसंद है तो हमें भी पसंद आना चाहिए। ये इस ड्रामा को भगवान पसंद करते हैं, इस ड्रामा का हर एक्टर उसे पसंद है, इस ड्रामा के हर एक्टर की हर एक्शन उसे पसंद है। तो
बनाया
बहुत सारे बाबा नेगर भाई कहते हैं ना, बहुत सारे ड्रामा बाबा के पास है, बाबा ने ये चुना, जो बाकी जो ड्रामा थे वो उसमें थोड़ा गड़बड़ था, इसके लिए ये जो चुना ये सबसे बेस्ट है। हमको ये ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि हम अपनी छोटी दृष्टि से देख रहे हैं इसको, हम अपने स्वार्थपूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, इसके लिए हमको इसमें दोष दिखाई पड़ते हैं, परंतु ये ड्रामा एक्यूरेट है, परफेक्ट है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, इसमें अदली बदली नहीं हो सकती है, एक सेकंड भी यहां से वहां नहीं हो सकता है। और भी कोई पॉइंट है ड्रामा का?
ड्रामा में जो है वो घिसता भी नहीं,
हाँ मिटता नहीं, घिसता नहीं, ये एक बार जो फिक्स हो गया बस, ड्रामा फिक्स्ड है,
जू की तरह चलता है,
जू की तरह टिक 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 होती रहती है ड्रामा की, बड़ा स्लो चलता है।
फॉरवर्ड नहीं हो सकता
थोड़ा, नो फॉरवर्डिंग,
अटल है, जो हो रहा है कभी नहीं होगा, जो
फिक्स्ड है ड्रामा,
एक्टर बदलते रहते हैं, इसमें कोई एक्टर
बदली बदली नहीं हो सकती इस ड्रामा में। तो ये सारे पॉइंट्स परिस्थितियों में अचल रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां जब आती है तो सारे पॉइंट्स हमको याद रहने चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं क्या है फुल स्टॉप लगाने का सहज साधन, जो हुआ जो हो रहा है जो होगा वो अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तब उठता है जब अच्छा नहीं लगता, ऐसा क्यों, क्या क्यों, ये जो प्रश्न है ना, परसों कहा था ना वरदान में, जब ये सदर्शन चक्र उल्टा घुमाते हो, राइट की जगह लेफ्ट घुमाते हो, तो फिर परदर्शन चालू होता है, क्या क्यों का जाल खुद तैयार करते हो और खुद ही उसमें फंसते हो। इसलिए संगम युग है ही अच्छे से अच्छा, हर सेकंड अच्छे से अच्छा, बाहरी मौसम है ही, विजय का मौसम है, यहां असंभव को संभव करने का मौसम है ही। वरदानी जन्म है तुम्हारा अलौकिक जन्म, इस अलौकिक और वरदानी जन्म में मेहनत
एक सुहावना
क्या कहेंगे अगर इसमें भी कोई मेहनत कर रहा है। एक सेकंड कितना सुहावना है, सर्व प्राप्ति करने का सुहावना सेकंड है ये एक एक। इससे सदा सहज योगी जीवन का अनुभव करेंगे। अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है, ये सबकॉन्शियस माइंड के प्रिंसिपल से सारे। अच्छा कहते रहो तो अच्छा हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम यहाँ काम कर रहा है, विश्वास का नियम यहाँ काम कर रहा है। ये बड़ा गुरु साइकोलॉजी सिखा रहे बाबा, ये इट इज अ डीप साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी भी है, ये पैरा साइकोलॉजी भी है, परा मनोविज्ञान भी है ये। तो एक होता है साइकोलॉजी विपणो विज्ञान, उसके भी ऊपर होता है परा मनोविज्ञान, तो ये वो भी है। स्वयं भी अच्छे और जो एक्ट करेंगे वह भी अच्छे, हम अच्छे और सब अच्छे, किसी में कोई दोष ही नहीं है, सब अच्छे ही अच्छे है। हाँ सब अच्छा ही अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही अच्छा है। वो रामकृष्ण परमहंस के जीवन में दिखाते हैं, वो तो था अनपढ़ गवार, पर उसकी महिमा बहुत हो रही थी, जैसे लोग उसे अवतार मान रहे थे। और बंगाल में एक बहुत ही एक इंटेलिजेंट व्यक्ति था, केशव सेन। वो इतना बुद्धिमान था कि वो तर्कशास्त्री था, मतलब वो अपनी बात अगर वाद विवाद करे तो कैसे भी करके दूसरों को अपनी बात स्वीकार कराने पर मजबूर कर दे, इतने उसके पास तर्क थे। पर भगवान को नहीं मानता था, नास्तिक था वो। तो सब लोगों ने कहा कि इस रामकृष्ण के पास जाओ आप तर्क करने के लिए। वो कहता है कि भगवान है और वही सब कुछ है, और वो कहता है कि मैं तो बस परमात्मा से बात करता हूँ, काली के ही ध्यान में रहता है, माँ माँ करते रहता है, तो आप जरूर उसके पास जाओ शास्त्रार्थ करने के लिए। तो ये जो इसके जो भक्त रहते हैं रामकृष्ण जी के, वो थोड़ा डरते हैं, वो लगते है पता नहीं फजीयत हो जाएगी अगर वो आ जाएगा तो ये क्या करेगा। पर ये तो रामकृष्ण इतना भोला भाला रहता है, पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं, उसको तो कुछ आता नहीं, पर वो तो एकदम तन्मय अवस्था में, जैसे ध्यान में रहता है, समाधि की अवस्था, भाव समाधि जिसको कहते हैं। तो वो दोनों की सभा होती है और उसको देखने के लिए कई लोग आते हैं वहां पर। कुछ लोग तो एक मजाक के लिए भी आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए, देखते हैं क्या होता है अभी, हाँ क्या इन दोनों के बीच में होता है। और इनके जो भक्त रहते वो डर रहते हैं, और उनके जो रहते हैं वो लगता है अभी इनका। कुछ लोग ऐसे भी इस भाव से भी आते हैं देखने के लिए कि अभी देखते हैं, देखो कैसी इसकी हार होती है अभी, क्योंकि वो एकदम महाज्ञानी रहता है, सारे शास्त्र जिसने पढ़े सब, परंतु भगवान को नहीं मानता है। तो वो आते दोनों बैठते हैं और दोनों का वाद विवाद चालू होता है। तो केशव चंद्र बहुत सारी तर्क वितर्क देता है, तो ये कुछ कहता ही नहीं, वो केवल खड़े होता है, बार बार उसके गले मिलता है, वाह 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लोगों को आश्चर्य होता है ये क्या हो रहा है, एक ही तरफ से चल रहा है सब कुछ, ये तो कुछ कह ही नहीं रहा है। लोग सोच रहे थे यहाँ तो झगड़ा होना चाहिए था, वो हो ही नहीं रहा है कुछ। फिर केशव चंद्र कुछ कह रहा है, तर्क दे रहा है, ये वापस खड़ा हो रहा है, बोलता है वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उसके वापस गले लग रहा है, फिर बैठ रहा है। तो ऐसा ही चालू, अभी झगड़ा वाद विवाद तो तब हो कि कोई विरोध करे, ये विरोध कर ही नहीं रहा है, वो जो भी कह रहा है उसको सत्य मान रहा है। और अंत में खाली इतना ही कहता है कि जो व्यक्ति बोलते उसको, वो पूछता है कि मैंने इतने सारे तर्क दिए, आपने कुछ कहा ही नहीं अभी तक। तो बोलते मैं क्या कहूं, मैं तो केवल भगवान का धन्यवाद देता हूं कि जो भगवान की सृष्टि में इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है वो अब तक भगवान को नहीं मानता, यही मुझे आश्चर्य है। अगर इतना इसके पास ज्ञान है संसार का, ये कोई भी बात को मनवा सकता है दूसरे से, पर ये भगवान को नहीं मानता, यही आश्चर्य है। और इस प्रसंग के बाद केशव चंद्र अपनी डायरी में लिखता है, आज पहली बार मुझे एक व्यक्ति मिला कि जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि भगवान कुछ होता है क्या, आज तक उसको कोई जीत नहीं सका था। तो ये इस तरह का जो भोलापन है ना, बाबा को ऐसे बच्चे प्रिय है, बाबा कहते हैं ना अति भोले और गरीब, कल कहा ना बंगाल बिहार वालों को, बंगाल और बिहार। तो बाबा कहते हैं ये अच्छा अच्छा कहते रहो तो अच्छा हो जाएगा, किसी में कोई दोष ही नहीं, चाहे हमारा कोई विरोध भी कर रहा है सब अच्छा है, कोई दोष नहीं। अच्छे को देख करके दूसरे आकर्षित अवश्य होंगे, सभी अच्छे ही पसंद करते हो ना, अच्छा सेवा अच्छी चल रही है ना, संख्या भी बढ़ाओ और क्वालिटी भी बढ़ाते चलो, ऐसे माइक तैयार करो जो एक के नाम से अनेक का कल्याण हो जाए, स्वयं सदा संतुष्ट हो। अपने लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, निश्चय है फाउंडेशन, निश्चय का फाउंडेशन होगा तो कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होंगे। पहले स्मृति निश्चय की होती है, संकल्प में निश्चय अर्थात दृढ़ता होगी तो कर्म ऑटोमेटिक फल देंगे। अच्छा सभी खुश और संतुष्ट हो, सदा खुशी में नाचने वाले हो, हलचल का समय समाप्त हो गया, पास को पास किया और फ्यूचर तो क्या है ही बहुत सुंदर, गोल्डन फ्यूचर है। कैसा है फ्यूचर? गोल्डन है। और बाबा ने यहां और एक चीज कौन सी कही, निश्चय फाउंडेशन है। निश्चय का अगर फाउंडेशन है तो कर्म श्रेष्ठ ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।